اگلی کچھ مزید باتیں، وہ اذا قیل لہم، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالو آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، تمہارے لیے مغفرت طلب کرے اللہ کا رسول، کدھر اشارہ گیا؟ اسی موقع پہ جب عبداللہ بن ابی کو مجبور کیا گیا کہ آؤ چلو اللہ کے نبی کی بات مانو، توبہ کرو، تم نے بہت غلط بات کی، تم نے ان کی شان کے خلاف بات کی، اب ذرا دیکھیے گا کہ ریئیکشن کیا آیا، لو و رؤوسہم، بڑا مشکل لفظ ہے بولنے میں، لو و، انکار سے اپنے سروں کو گھماتے ہیں، لام یا اس کا روٹ ہے، موڑنا گھمانا، تکبر کا اظہار کرتے ہوئے انکار کرنا، لو و، انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا بات کہی تھی اس نے، تم نے کہا ایمان لاؤ میں لے آیا، تم نے کہا زکوٰۃ دو میں نے دے دی، اب تم کہتے ہو میں محمد کو سجدہ بھی کر لوں صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو مجھے بس ایک شخصیت کے پیچھے لگا رہے ہو، یہ کروں؟ ورائیتہم یصدونا، اور تو ان کو دیکھے گا کہ وہ حاضری سے رک جاتے ہیں، کس حاضری سے؟ نبی کے پاس آنے سے رک جاتے ہیں، کیوں؟ وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں، کیسی علامت ہے؟ حالات نے جب ان کے نفاق کا پردہ چاک کر بھی دیا، لوگوں کو ان کے اندر کی باتیں پل مل بھی گئیں، لیکن نفاق کا نقاب اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پھیلاتے، اسلام کو نقصان دیتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ کبھی بھی نہیں آئیں گے، آج نبی بھی دنیا میں آ جائیں منافقوں کے پاس ان کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوگا، حرام بزنس اس وقت بھی بند نہیں ہوں گے، یہ تو شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے حکمتوں والے ہیں، اس نے نبی کو اتنا دکھ نہیں دیا کہ اتنی لمبی عمر دے دیتا، اللہ کے نبی کے ارد گرد تو سچے لوگ ہی تھے، یہ چند تھے منافق، ان کی باتیں نہیں ختم ہو رہی قرآن میں، آج کے دور میں نبی ہوتے اور وہی کا سلسلہ بھی جاری ہوتا، میرا حال ہے قرآن کے 20 ایڈیشن بن چکے ہوتے، روز نئے پول، روز نت نئے طریقے، ایسے لوگ کچھ بھی کر لیں آپ کیا کریں گے، سواؤن علیہم، یکساں ہیں ان پر، استغفرت لہم، آپ طلب مغفرت کریں ان کے لیے، ام لم تستغفر لہم، یا آپ مغفرت طلب نہ کریں ان کے لیے، اللہ کا فیصلہ کیا ہے، لن یغفر اللہ لہم، ہرگز نہیں اللہ بخشے گا ان کو، وجہ، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کیونکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو راستہ نہیں دکھاتا، کتنی بدبختی ہے، سورۃ توبہ میں بھی پڑھی تھی نا یہ بات، کہ آپ ایک دفعہ نہیں 70 ان کے لیے مغفرت طلب کریں پھر بھی نہیں بخشیں گے، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھیں، ان کی قبر پہ کھڑے ہو جائیں، یہ فاسق ہیں، اللہ پھر بھی نہیں بخشیں گے ان کو، سورۃ توبہ کی آیت 84 تھی۔ دو باتیں پتہ چلتی ہیں اس آیت سے، نمبر ایک، دعائے مغفرت صرف ہدایت یافتہ لوگوں کے حق میں فائدہ مند ہوتی ہے، جو زندگی میں خود ہدایت کے طلبگار ہوں، بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جو زندگی بھر نافرمانیوں میں رہے، دوسرا جو مرضی کرے یہ اس کی بات ہے، اور دوسری یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت بخشنا اللہ کا طریقہ ہی نہیں ہے، جو خود ہدایت کی طلب نہ رکھے۔ اچھا، لوگ کوئی درس سنتے ہیں نا، بڑے خوش ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا بس آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو میں کہتی ہوں آپ کے لیے دعا یہ ہے کہ اللہ آپ کو کتاب سے جوڑ دے، نہیں بس آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں بہت یاد رکھیں، وہ پرانا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، بس دعا کریں، تو دعا تو ایک ہی ہے کہ اللہ آپ کو اس کتاب کی مٹھاس دے دے، آپ کو تھوڑا زندگی میں وقت دے کہ آپ اس کے بارے میں سنجیدہ ہو جائیں۔ یاد رکھیے، جو خود راستہ پلٹ کے چلا جاتا ہے اللہ اس کو پلٹاتا نہیں، اللہ بڑا غیور ہے، کچھ لوگ لوگوں کی منتیں کرتے ہیں، پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں پیچھے پھرتا، خود منہ پھیرو گے پھیرے گا، اور تم آؤ گے تو نولی ہی ماں تولا، راستے میں فرشتوں کے پر بچھوا دے گا، مچھلیوں کو آپ کی خدمت میں لگا دے گا، نہیں آتے تو جہاں رہو خوش رہو، تمہیں کوئی بلاتا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شر الناس یوم القیامت ذل وجہین، قیامت کے دن بدترین انسان دو چہروں والا ہوگا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ دو چہروں والا کون ہوتا؟ فرمایا، یاتی بقوم بہا اولائی، جو ایک قوم کے پاس ایک چہرے کے ساتھ آتا ہے، ویاتی بقوم بہا اولائی، اور دوسری قوم کے ساتھ دوسرے چہرے کے ساتھ جاتا ہے، اشارہ نفاق کی طرف تھا۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ مومن کہیں جاتا ہی نہیں، خدا نخواستہ آپ دیکھیں کہ مومن پلان کر کے تو گناہ کی محفلوں میں واقعی نہیں جاتا، لیکن کبھی اگر کہیں سے اس کو کوئی اپنی مجبوری کی خاطر گزرنا پڑ جائے تو آپ کہیں کہ اس سے مراد افضل وجہین ہو گئے، یہ مراد نہیں ہے۔ سب کو پتہ کہ نفاق کیا ہوتا ہے، حقیقت کیا ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سارا دن مسجد میں بیٹھے رہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سارا دن قرآن کی کلاس میں رہیں، آپ کو زندگی میں کئی مرحلے آئیں گے۔ اصل یہ کہ اپنے دلوں کے قبلے درست کرنے کی بات ہے، اور مومن کا دل بڑا صاف ہوتا ہے، اتنا شیشہ صاف دل کا ہوتا ہے اس کا کہ وہ نہ کسی کے بارے میں برا سوچتا ہے، نہ پھر اس کو امید ہوتی ہے کہ لوگ میرے بارے میں سوچتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے مومن بڑا بھولا بھلا ہوتا ہے، قیس ہوتا ہے، اپنے نفس پہ قیس کرتا ہے نا، جب خود دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں اس کو پرواہ ہی نہیں، اور جس کے اپنے دل میں کئی باتیں ہوتی ہیں وہ دوسرے سے بھی ویسا سوچتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے یہ پول کھول کر ہم سب کو توجہ دلا دی کہ اگر اتحاد چاہتے ہو، امت مسلمہ کو جوڑنا چاہتے ہو، تو مفادات کو پیچھے کر کے اللہ کے دین کو آگے لے آؤ۔ عبداللہ بن ابی کا مسئلہ کیا تھا، ذرا آپ تھوڑا سا اس کے اینگل سے سوچیں بیٹھ کے، کیا اس کا مسئلہ تھا؟ آپ سوچیں، نماز بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دی، لیڈر بھی اللہ کے نبی نے اس کو بنا دینا تھا۔ جس میں خوبی ہوتی ہے وہ تو خود ہی لیڈر بن جاتا ہے، اور جس میں نہیں ہوتی وہ بنا ہوا اتر جاتا ہے۔ اس کا مسئلہ کیا تھا، غور کریں ذرا، لیڈرشپ تھی نا، مجھے لیڈر بنانا، میرا رسم ہو رہی تھی، میں دونوں اوس اور خزرج کا لیڈر بن رہا تھا، اب اللہ کا نبی کیوں بن گیا؟ یاد رکھیے اس کا مسئلہ بھی اس کی ذات تھی، انا تھی۔ آج امت مسلمہ کا اتحاد جو نہیں ہو پاتا جہاں، اس میں پرابلم لیڈرشپ ہے، معتوب نہیں بننا چاہتے۔ ہر بندہ لیڈر بننا چاہتا ہے، فالوور کو نہیں بننا چاہتا، ہر بندہ امام بننا چاہتا ہے، مقتدی نہیں بننا چاہتا۔ اور جب اتنے گروہ چھٹ کے ایک بنے گا تو ظاہر ہے 10 گروہ ایک بنیں گے تو 9 لیڈر بھی تو فارغ ہو جائیں گے نا، یہ مسئلہ ہے اس دور کا آج بھی، اور ایسے لوگوں کو اللہ پھر ہدایت نہیں دیتا۔ مزید حالات کے مطابق ان کی باتیں کر دی گئیں، ہم الذین یقولون، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں، لا تنفقو، مت خرچ کرو ان اللہ والوں پہ، علی من عند رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کے پاس ہوتے ہیں۔ کہتے تھے مت خرچ کرو ان پہ، مت دو ان کے چندے، نہ دو ان کو کچھ ہیلپ، ہوگا کیا نتیجہ، حتی ینفدو، یہاں تک کہ بھوک سے تنگ آ کر تتر بتر ہو جائیں گے، مدینہ چھوڑ کے واپس مکہ چلے جائیں گے، یہ افورڈ نہیں کر سکیں گے، یہ برداشت نہیں کر سکیں گے، جب ایکسپنسز کو میٹ نہیں کر سکیں گے سارا کچھ ختم اور چل پڑیں گے۔ کہا ایسے لوگوں کو بتا دو، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں خزانے آسمانوں اور زمین کے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق اس حقیقت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ چھت پکی کیوں ہوتی جا رہی ہے، وہاں کے لکڑی کے ممبر کی بجائے اتنا خوبصورت ممبر کیوں آ گیا۔ یہ کہتے تھے مت خرچ کرو، یہ اشارہ ہے انہی منافقوں کی باتوں پہ جو مدینہ میں اپنی نجی محفلوں میں کرتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے، یہ مہاجر آ گئے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے، مت خرچ کرو ان پہ، واپس چلے جائیں گے۔ واقعی واپس چلے جاتے اگر پیسوں کے لیے آئے ہوتے، اگر واقعی لیڈرشپ کے لیے آئے ہوتے تو واپس چلے جاتے، ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ آئے کس لیے ہیں، اور جس کے لیے آئے ہیں وہ اس کام میں ان کا معاون ہے، مددگار ہے۔ مدینہ کی ہسٹری اگر آپ پڑھ لیں نا ایک دفعہ، تو آپ کو اپنے لیے بھی بہت لائن آف ایکشنز مل جاتی ہیں۔ میں نے تو ہمیشہ ایک چیز دیکھی ہے کہ جس انسان کا اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا نا، وہ آپ کے لیے دین کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن پڑھنے کے بعد بندہ جو فیصلے کرتا ہے وہ قرآن پڑھنے سے پہلے کر ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے، اتنا حریص اور لالچی ہو جاتا ہے بندہ۔ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ، ایک ایک بات کا جواب تو پھر قرآن سے ملتا ہے نا۔ یہ ایسی باتیں کر کے اللہ کے نبی کے خلاف بات کرتے تھے، मक्का से जब लोग हिजरत करके मदीना आए, लोगों ने इतनी खिलाफ बातें कर दी नबी सल्लम और सहाबा के, यहाँ तक कि ये बात फैल गई मक्का में कि मदीना के बुखारों ने मुहाजरीन को कमज़ोर कर दिया, तोड़ के रख दिया, बड़े वीक हो गए हैं वहाँ, इनको कोई अच्छा हाल नहीं मिला। जब अल्लाह के नबी सल्लम उमरे पे गए तो सहाबा से कहा कि रमल और इस्तबा करके दिखाओ इनको पहलवानों की तरह दौड़ के, कि हम कोई नहीं कमज़ोर हुए। क्यों नहीं कमज़ोर हुए? इसलिए कि तुम कहते हो ला तुनफिकु अला मन इंद रसूलिल्लाह, मत खर्च करो इन पे जो अल्लाह के रसूल के पास होते हैं, हत्ता यनफद्दू, यहाँ तक कि खुद ही बिखर जाए। ये फद्दू का लफ्ज़ वही है जो पीछे भी गुजरा, फिजा चांदनी को कहते हैं, पत्रियाँ, बिखर जाना, यानी ये बिखर जाएंगे, इनकी कोई साख नहीं बनेगी, कुछ नहीं बनेगा। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ध, ये बस इनको बता दो खजाने उसके हैं जो आसमान और ज़मीन वाला है। वलाकिन अल मुनाफिकीन अला यफ़क़ून, मुनाफिक कभी नहीं समझता, वो कहता है कैसे होगा, किस तरह ये होगा, ये क्या हालात होंगे। वलाकिन अल मुनाफिकीन अला यफ़क़ून यकूलून लैर रजअना इला अल मदीनति, मुनाफिक कहते हैं कि अगर हम लौट कर गए मदीना में, लयुख़रिजन अल अअज़्ज़ु मिनहा अल अज़ल, तो इज़्ज़त वाले वहाँ से जलीलों को निकालेंगे। नऊज़ु बिल्लाह, आज़ु कौन है की नज़र में? अब्दुल्ला बिन उबई अपने और अपने साथियों को कह रहा था, बाकी आप सुन चुके हैं। और अज़ल किसको कह रहे हैं? जलील की जमा। अस्तग़फिरुल्लाह, सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे अकबर है ना, अफजल है ना, आलम है ना, इस तरह अज़ल जलील से सबसे ज़्यादा जलील। इज़्ज़त कहते हैं वो हालत जो इंसान को मगलूब होने से बचा ले। हज़रत उमर फारूक कहा करते थे, नहनु कौमुन, हम वो कौम थे, अअज़्ज़ल्लाहु, इज़्ज़त दी अल्लाह ने हमको, बिल इस्लाम, इस्लाम के ज़रिए। इसने अपने ज़ोम में कहा, लेकिन इसका बेटा खुद ही आगे आ गया, कहने लगा अब्बा जब तक तुम ये जुमला वापस नहीं लोगे मैं तुम्हें मदीना में आने नहीं दूंगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत ज़ैद बिन अरकम कहते हैं, जब मैंने अब्दुल्ला बिन उबई का ये कॉल जो रसूलुल्लाह तक पहुँचाया गया, इसने आकर साफ इनकार कर दिया और इस पर कसम तक खा गया। अंसार के बड़े बूढ़ों ने और ख़ुद मेरे अपने चचा ने मुझे बहुत मलामत की, हत्ता कि मुझे ये महसूस हुआ कि रसूलुल्लाह ने भी मुझे झूठा और अब्दुल्ला बिन उबई को सच्चा समझा। इस चीज़ से मुझे ऐसा हम लाहक हुआ जो उम्र भर कभी नहीं हुआ, और मैं दिल गिरफ्तार हो गया। फिर जब ये आयात नाजिल हुई, ये आखिरी आयात जो हम पढ़ रहे हैं, जब ये आयात नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाकर हंसते हुए मेरा कान पकड़ा और फरमाया, लड़के का कान सच्चा था, अल्लाह ने इसकी खुद तस्दीक फरमा दी। ये कहते हैं, यकूलून लैर रजअन इलल मदीनति लयुख़रिजन अल अअज़्ज़ु मिनहा अल अज़ल, कितना प्यारा वाक्य अपने बच्चों को रग़बत दिलाने वाला, कि बच्चों सच बोलो, अल्लाह तुम्हारी मुताबकत कर देगा। लेकिन फिर वही बात के बाद आम लोगों को समझ नहीं आती, का वलिल्लाहिल इज्जत वली रसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून, हालांकि इज्जत सारी की सारी अल्लाह के पास है, उसके रसूल के लिए और ईमान वालों के लिए, लेकिन मुनाफिकों को ये बात समझ कोई नहीं आती। वो तो चाहते हैं गुनाह में इज्जत, वो तो चाहते हैं कि इज़्ज़त वहाँ से मिले कि जहाँ अल्लाह को नाराज़ कर दें। आज देखिए, हर गुनाह को इज़्ज़त का नाम लेके नहीं करते। इज़्ज़त का मसला, ये ना पहन के बाहर निकलेंगे तो इज़्ज़त नहीं रहेगी, ऐसी शादी नहीं करेंगे तो इज़्ज़त नहीं होगी, ऐसा घर नहीं बनाएंगे तो इज़्ज़त नहीं होगी। बताइए कितनी इज़्ज़त होगी? कपड़ों से इज़्ज़त होती? हम एक दूसरे की कपड़ों से इज़्ज़त करते हैं क्या? सुबह से हम बैठे हैं, हम में से किसी ने भी किसी के कपड़ों की वजह से कोई किसी से मोहब्बत की? बड़ी गाड़ी में आप में से कोई आया, वो बाहर खड़ी, उसका दिल और बाहर धड़क रहा होगा कि अल्लाह करे खैर से गाड़ी खड़ी हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? क्या आप में से किसी को जो पेपर पे नंबर मिलते हैं वो इज़्ज़त से मिलते हैं? किस घर से आए आपको क्या सब अल्लाह की नज़र में फ़कीर हैं? असल इज़्ज़त मिलेगी तो किसको मिलेगी? इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, सूरह हुजरात में पढ़ चुके, तुम में से सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला मुत्तकी है। अगर आप इज़्ज़त चाहते हैं ना, हर एक चाहता है, बंदे की फितरत में, बच्चा भी इज्जत चाहता है। आप उसको डांट के बोलेंगे वो भी डांटेगा, छीनेंगे वो भी गुस्से में आ जाएगा, चिड़चिड़ा होगा। जो माएँ चिड़ती रहती हैं ना, उनके बच्चे भी बहुत चिड़चिड़े होते हैं। जो माएँ स्माइल करती हैं, बच्चे भी स्माइल करते हैं। हर बंदे को इज्जत चाहिए, इज्जत चाहिए तो लिल्लाह ही, अल्लाह से जुड़ जाए, रसूल से, ईमान आ जाए, तकवा आ जाए, खुद ब खुद इज्जत मिल जाएगी। लेकिन वलाकिन अल मुनाफिकीन ला यालमून, लेकिन मुनाफिक इस बात को जानते ही नहीं है। लिहाजा इस पूरी सूरत और पूरे वाक़े का आखिरी जुमला जो हम सब को अपनी मौत को सामने रखने के लिए मददगार है, और वो क्या कि इज्जत चाहते हो, दौलत चाहते हो, माल चाहते हो, तो ज़रा सुन लो कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालो, तुम्हें गाफिल न कर दें तुम्हारे माल और न तुम्हारी औलादें अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की याद से। और ज़िक्र नमाज भी है और ज़िक्र कुरान भी है। अकीम सलात तली ज़िक्री, दलील है इस बात की कि नमाज को ज़िक्र कहा। और इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस ज़िक्र को नाजिल किया, दलील है इस बात की कि कुरान भी ज़िक्र है। तो क्या पता चला कि ना हलाक करें, तुल्हिकुम का लफ्ज़ पीछे भी पढ़ चुके हैं, इल्हा युल्ही लहवन, हर वो चीज़ जो अहम चीज़ से गाफिल कर दे, ना मशगूल कर दे तुमको, ना गाफिल कर दे तुमको। यही लफ्ज़ सूरह तकासुर में आता है, अल्हाकुमुत तकासुर, गफलत में डाल दिया तुमको कसरत की हवस ने। क्या क्या ना कर दे, अमवालुकुम, ये किसका मरहला है, मर्दों का, और औलादुकुम किसका मरहला है, औरतों का। मर्द अक्सर नमाजों से, कुरान से, ज़िक्र से गाफिल रहते हैं कमाने के लिए, क्या करें अब नमाज़ें पढ़ें कि जुम्मे पढ़ें, ये अंदाज़। और औरतें नाम ले देती हैं बच्चों का। अल्लाह कहते हैं प्लीज़ ओ मुस्लिम्स गौर करो, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, असल मसला आखरत की कामयाबी का है, मगर इंसान माल और औलाद में खोया रहता है और आखरत पीछे पड़ जाती है, गैर अहम हो जाती है। हर बच्चा इम्तिहान का पर्चा है, उसमें आपको पास होना पड़ेगा। एक एक डॉलर और एक एक क्रोन जो हमारे घरों में आता है ना, ये इम्तिहान का पर्चा, हम इनको इनाम समझते हैं, हालांकि ये आजमाइश है। जब तक इन चीज़ों को आखरत के लिए नहीं लगाते, आखरत में दिल नहीं लगेगा। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि उठो, इनको भी खर्च करो अपने मेरे रास्ते में, लगाओ अपनी औलादों को मेरे रास्तों में, लगाओ अपने माल को मेरे रास्ते में, गफलत में ना पड़ जाओ, इनको अल्लाह के रास्ते में लगाओगे तो फ़ायदा होगा, वरना क्या होगा। वमन यफ़अल ज़ालिक फ़ौलाइका हुमुल ख़ासिरून, और जिन लोगों ने ऐसा किया फिर वही असल में खसारे वाले हैं। ख़ासिरून का इंग्लिश में बड़ा खूबसूरत तर्जुमा होता है, बैंकरप्ट। हुम का लफ्ज़ और शिद्दत ताकीद के लिए अल ख़ासिरून के साथ आ गया। खसारे से बचना है तो क्या करो, वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, और ख़र्च कर लो इस रिस्क में से जो हमने तुमको दिया। मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम में से किसी को मौत आ जाए। किसी को पता कब आएगी, ना डेट इसकी है ना का अपॉइंटमेंट है, तो मतलब ये किसी भी वक्त आ सकती है। फिर जब मौत आएगी तो क्या होगा, फ़यकूल रब्बी, उस वक्त वो कहने लगे ए मेरे रब, लौला अख्खरतनी इला अजलिन करीब, तूने थोड़ी सी मोहलत क्यों ना दी मुझको, ज़्यादा नहीं करीब, बिल्कुल थोड़ी सी, चंद घंटे। फरिश्ते पूछते होंगे क्यों, क्या करोगे, कोई घर बनाना है, कोई बच्चों की शादियां करनी है, नहीं, दो ख्वाहिशात करता है मरने वाला, फ़सद्दका, इसको हाईलाइट कर लें, ताकि मैं सदका व खैरात कर लेता, बड़ा माल पड़ा है तिजोरियों में, बैंकों में पड़ा है, सोने चांदी में पड़ा है, घरों में पड़ा है, अभी थोड़े घंटे की छुट्टी तो अभी दे के आया, मुझे नहीं पता इसी माल की वजह से मेरे बच्चों ने कितना लड़ना है आपस में, और कोई मेरे नाम पे उन्होंने भी खर्च करना है अल्लाह के रास्ते में कि नहीं, मैं अपने हाथ से दूँ। मौत के वक्त इंसान बहुत रियलिस्टिक होता है, उसको बच्चों से भी मोहब्बत नहीं रहती, अपनी जान को पड़ी हो तो किसी की क्या फ़िक्र। तो लिहाजा फ़सद्दका, सदका कर लो। और दूसरा काम, वअकुम मिनस सालिहीन, नेक लोगों में शामिल हो जाऊं। सारी ज़िंदगी नियत ही करता रहा मैं भी शामिल होता हूँ, मैं भी होता हूँ, लेकिन कभी नफ्स आता था, रुकावट बनता था, कभी कोई तासुब आता था, कभी कुछ आता था, मैं पीछे ही रहा, पीछे ही रहा। अल्लाह मैं ज़रा नेकों में साथी हो जाऊँ, नेकों में चला जाऊँ। कितनी अच्छी ख्वाहिश है, कोई एक भी बुरी बात है इसमें? सारी ज़िंदगी इंतज़ार करने वाला रब, रात को, दिन को, सुबह को, शाम को आ जाओ, पलट आओ। अत्ताइबूना आबिदूना लिरब्बिना हामिदून, पुकारता है रात को आसमान दुनिया पे आके पूछता है हल मिम मुस्तफ़िर, आओ कोई तौबा करो। लेकिन मौत के फरिश्ते दिख गए, पर्दा खुल गया बीच का, तो वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन, हरगिज़ अल्लाह मोहलत नहीं देता किसी शख्स को, इज़ा जाअ अजलुहा, जब उसकी मौत का वक्त आ जाएगा। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह ताला खूब जानता है तुम क्या करते हो। इस जुमले का यहाँ क्या रब था, गौर करें ज़रा। अल्लाह को ये पता है कि तुम्हें मौका दे भी दिया जाए, करना फिर भी कोई नहीं तुमने। पीछे पढ़ चुके सूरत मोमिनून के आखिर में, कई जगह कुरान में ये जुमला गुजरा, वलौ अन्ना लना करतन फना तबर्रउ मिन्हुम कमा तबर्रउ मिन्ना, सूरत बकरा में आता है कि मुशरिक मैदान महशर में खड़े होकर कहेंगे अल्लाह एक बार हमें दुनिया में वापस भेज, हम अपने इन लोगों से, बड़े बुजुर्गों से इस तरह बेनियाज हो जाएंगे जैसे आज ये हमसे बेजार हुए हैं, इन्होंने हमें शिर्क में डाला और हम इनसे आज दूर हो जाएं। अल्लाह कहते मुझे खूब पता है कि तुम्हें वापस भेज भी दूंगा फिर ही करोगे, वलौ रुद्दू लआदू, अगर ये वापस पलटा भी दिए जाए ना तो ये फिर वही काम करेंगे। अल्लाह अकबर। आप देखिए माल और औलाद का जिक्र ख़ास तौर पे यहाँ हुआ क्योंकि ज़्यादातर इंसान इन्हीं के मुफाद की खातिर ईमान के तकाज़ों से मुंह मोड़ता है ना। ईमान का ज़ोक फिस्क नाफरमानी है। हकीकत में दुनिया की हर वो चीज़ इंसान को अपने अंदर जो मशगूल कर ले, अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, ये खराबियों की जड़ है। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत, मौत से कराहत। जवाबदही का जब एहसास नहीं रहता तो इंसान अल्लाह की नेमतों को अपने इस दुनिया ही के कामों में खपा लेता है। ज़रूरत इस बात की है कि इंसान खुद को देखे, सोचे कि अल्लाह की ज़ात ने मेरे लिए क्या कुछ तैयार किया और मैं उसको छोड़कर इस दुनिया के पीछे फिर रहा हूँ। क्या इंसान लेता है, क्या देता है? आप देखिए वो औलाद जो हमारी ज़िंदगी में अल्लाह के दीन से जुड़ जाएगी, क्या हाल होगा उसका? अगर आपको प्यार है अपने बच्चों पर तो फिर आपके माँ बाप को भी तो आप पे प्यार होगा। नहीं युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, बस इसके ऊपर गौर करिएगा बाद में। नबी सल्लम ने फरमाया, आपसे पूछा गया कौन सा सदका बेहतर है, तो आपने फरमाया सेहतमंदी की हालत में मुफलिस होने के खदशे के बावजूद, यानी अभी सेहत है तो अभी बहुत जीने की उम्मीद है, फिर खर्च करो, और मुफलिस हो जाओगे देने के बाद इस अंदेशे के साथ भी खर्च करो और अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। फिर आपने फरमाया इतनी देर ना करो कि जान हलक में पहुंच जाए और तुम कहो उसको इतना दे दो, उसको इतना दे दो, हालांकि वो तो इनका होने ही वाला है। असल बात यह कि हम दुनिया में दें। देखिए यहाँ निफाक से बरी होने का नुस्खा है, लिखिए। निफाक से हर बंदा बचना चाहता है, ख़ासतौर पर आज की सूरत का इंट्रोडक्शन सुन के तो वाकई दिल चाह रहा है ना। तो निफाक से बरी होना है ना तो इनफाक कीजिए। एक अलिफ लगता है तो निफाक इनफाक में बदल जाता है, और हमारे अल्लाह के रास्ते में खर्च के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट निफाक है, मुनाफ़त है। वरना ये कैसे हो सकता है कि हमारे पास हो और अल्लाह के रास्ते में इंसान ना दे सके? सारी ज़िंदगी इंसानों के लिए एक इंसान तड़प तड़प, मशीन बन के मर्द काम करते हैं, मशीन बन के, और दूसरों की दुनिया बनाते बनाते अपनी आखिरत ख़राब कर दी। मरने वाले के पास फरिश्ते आके पूछते हैं लाओ क्या लाए, माँ कद्दमत लिगत, क्या भेजा कल के लिए, और दुनिया वाले मैयत सामने पड़ी होती है और कहते हैं क्या छोड़ के गए, कितना मिला बेटियों को, कितने बच्चे छोड़ गए। आपने फरमाया तनिम हमसन कबला हम्स, पांच चीज़ों को पांच चीज़ों से पहले गनीमत जानो, ज़िंदगी को मौत से पहले, जवानी को बुढ़ापे से पहले, दौलत को फ़कीरी से पहले, जवानी को बुढ़ापे से पहले, और सेहत को बीमारी से पहले। हम में से इन पांचों चीज़ों में किसी भी वक्त हम शरीक हो सकते हैं। ठीक है, एकदम बूढ़े नहीं होंगे, लेकिन बुढ़ापे की तरफ चल तो पड़ेंगे ना। आज बैठ के सोचिएगा इन पांच चीज़ों पे, कल कहाँ है। अपने पर किसको दूसरों का माल अपने माल से ज़्यादा प्यारा है? का कोई भी नहीं। किसको प्यारा है भाई? हमें तो अपनी चीज़ ही अच्छी लगती है। का फिर अपना तो वो है जो खा लिया और गंदगी बन के निकल गया, पहन लिया और चीथड़े बन गया, और अपने हाथों से आगे भेज दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे दिलों में अपनी आखरत का फिक्र डाल दें। बस नियत करते हैं ये होगा काम, मैं इतना दूंगा, जब वो मौका आ भी जाता है कहते हैं छोड़ो अब क्या करें। हाँ, अब कोई मुश्किल भी तो आ सकती है ना आगे ज़िंदगी में। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे दिलों के निफाक ख़त्म कर दे, हमारा दोगलापन ख़त्म कर दे, और हमें अपनी किताब के लिए सच्चे दिल से चुन ले। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.